कोई कपड़ा भी मत लेना है
जब वो संसार में रहते हैं।
और यहाँ से उठना मत, ये जैसे मैं 3 लाख नाम करता था ऐसे तुम करो,
बस वहीं पर उसी दिन
वहीं पर बैठ गई,
तुलसी की परिक्रमा करती, भगवान का नाम कीर्तन करती
और बस गंगा की पास में वहीं पर उनसे स्नान करके बैठ गया।
उस जगह कथा में बड़े बड़े वंदनीय साधु संत महात्मा लोग उसके दर्शनों के लिए आए।
इसलिए भक्ति जिस स्थिति में भी हो सकती है और हो करके उस व्यक्ति को संसार में सबसे ऊंचा बना देती है, ऐसी ये भक्ति है।
ये बात है,
भक्ति किसी की अपेक्षा नहीं रहती। सप्तम पहले भक्ति होने पहले दुराचार को छोड़ करके, पहले दुराचार छोड़ो और सब काम छोड़ दो तो फिर साधु तो साधु ही हो गया
नहीं। जो जी स्थान स्थित तनवान मनो, जो जिस अवस्था में वहीं से आरंभ कर दे और आर नारे बात कान पकड़ कर कहे अब मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, बस हो जाए।
किंतु वो भी करेगा, अन्याय अत्याचार भी करेगा, भक्ति भी करेगा, या ऐसा नहीं होगा
तो फिर भक्ति नहीं रहेगी, वहां से गिर जाएगी। इसलिए सबको उसी दिन से कान पकड़ करके अब मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, अत्याचार अनाचार और आज से बस भगवान नाम का सहारा।
उसके लिए प्रायश्चित करने की और कोई धर्म अधर्म धर्माश्रम धर्मकाज या और विधि ये सब कोई चीज की जरूरत नहीं। तो कह रहे हैं जहां तक कोई शुभ कर की प्रतीक्षा नहीं, ध्यान भी नहीं, योग भी नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं है। जैसे भक्ति इन सबसे अतिरिक्त होती है, अन्य अभिलाषिता शून्यम दान कर्म आदि आदि माने जो तपस्या व्रत होम स्वाध्याय संयम इत्यादि, उसकी भक्ति उत्तमा भक्ति अपेक्षा नहीं लगती। इस तरह से आशा भी ऐसी होनी चाहिए, आशा जिसकी जितनी शुद्ध रहेगी भगवान की कृपा से ही, नाम की कृपा से ही हमारा सब कुछ होगा, हम और कुछ नहीं करें। हम कोई विपत्ति को दूर करने के लिए हरिनाम कर रहे हैं और ये विपत्ति आ रही है, बुखार आ रहा है और कुछ हो रहा है, इसलिए वो क्या गले में बांधते हैं, हाथ में यहाँ पर बांध लेते हैं और सब गंगा इत्यादि देते हैं, कपी मुसलमानों की तबीज भी ले आए, अंगूठी यहाँ पर बांध ली 10-5, ये सब कुछ हो भक्ति निरपेक्ष है। वैसे उनकी आशा भी निरपेक्ष है, जो कुछ होगा भक्ति के द्वारा ही हमारा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा एकदम निरपेक्ष होकर के आशा भी निरपेक्ष है, कर्म ज्ञान योग तपस्या व्रत उस आशा में। इसलिए कहा यहां ज्ञान की जरूरत नहीं, शुभ कर्म भी नहीं, सज्जाति की भी आवश्यकता नहीं है, सज्जाति में अच्छे कुल में पैदा हुआ है कि क्या हुआ है, इस तरह से इसको बतलाया। आशा भी रहेगी ऐसे निरपेक्ष आशा, भक्ति भी निरपेक्ष रहेगी। तब हां हिनार्थ धन्यवाद, मैं दिनहीन हूं, जब तक दिनहीन नहीं होगा तब तक भक्ति भगवान की कृपा भी नहीं आएगी। इसलिए दिनहीन होकर के भगवान की अच्छुद मूला मैंने, अब वो आशा कोई काट नहीं सकता, मैं भी नहीं काट सकता, जरूर उनको पाना ही है हमको अच्छुद आशा। और वो जब ऐसा प्रार्थना करता है तब भगवान उसको ऐसी भक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति मोहन ठाकुर कहते हैं शरणादि भक्ति प्रेम भक्ति योग ही, इन सबसे मैं योगी हूं, ज्ञान योग कर्म ही, सज्ञाति विहीन, गंगा लेनाथ तुम्हें राधा प्राण धन तुमा पदे गृह आशा व्यक्ति। अब सिद्धि का परिचय दे रहे हैं, सिद्धि का परिचय क्या है, गोस्वामी वाक्य मैंने रूप रूप या रघुनाथ गोस्वामी रूप गोस्वामी का ही
तो है, राधा रसुदामी, राधा रसुदामी,
राधा रसुदामी भी कहा गोकुलम बिभ्राणा मत कुचते कंचुक पटन प्रसादम स्वामी स्वर तलब दत्तम प्रणयत सीता निमित्तं पार्श्वे विविध परिचर्य एक चतुरां किशोरीं आत्मानं चतुर परकीयां अनुपदये।
गोकुलम ब्रह्मभ्राणम सुचिक्षते पंचुकपतम। तो यहां हमारा कब ऐसा सौभाग्य होगा, कब ऐसा सौभाग्य होगा, जब स्वामिन्य श्रीमती राधिका जी हम पर प्रसन्न हो जाएंगी हमारी सेवा से परिचर्या से, ऐसे उनके मनोनुकूल हम सेवा करेंगे जिसे वो प्रसन्न होकर के क्या करेंगे, अपने हाथों से उसमें जो कुछ उनको मिल जाएगा, अपना अस्त्र वस्त्र माला मणि जो कुछ है वो उसको दे देंगे। कहते हैं श्रीमती राधिका जी की सेवा कभी मैं कर रही हूं, और उनको बहुत वो प्रिय लगा, सबसे प्रिय क्या सेवा उनकी है, किसी प्रकार के फल से बल से कल से कृष्ण से इनको मिलन था। जैसे मान लिया कि कहीं कृष्ण और सखियों के साथ में है, रूपवती मंदिर में से कोई एक हठात वहां पर पहुंच गई और पहुंच करके बोली, अरे ब्रज में एक असुर ने आक्रमण किया है, मालूम होता है वो केशी अथवा हरिष्ट इत्यादि की भांति ही है, इन्हें जल्दी से पधारो नहीं तो सभी को मार डालेगा। बस इंगित देख करके वो चली आई, कृष्ण ने उनको इसी बहाने से उन सबको छोड़ करके, जब कृष्ण वहां पर चले आए तो ये बड़ी प्रसन्न हो गई श्रीमती जी, जैसे कृष्ण को जैसे कैसे वहां से ले आई, इसलिए अपने गले का हार उतार करके देखा जैसे और कुछ नहीं फूलों का हार इत्यादि है, तो उन्होंने अपनी कंचुकी कंचुकी मैंने अपना ओढ़नी और अथवा अपना वस्त्र पहनने का कपड़ा उनको दान अपने हाथों से उनको पहना दिया और गले से लगा दिया। तो वही कहते हैं प्रणयतः अत्यंत प्रणय पूर्वक मैंने सत्य भाव से अपना समझकर, और उन्होंने दुकुल दे दिया, कंच को पट दे दिया, उनको धारण करा दिया और धारण करके प्रसादम प्रसाद के रूप में उन्होंने मैं ग्रहण करूंगी, सीता नित्यम पास से मैं उनके निकट में रह करके विविध परिचर्या बाप पत्तई यही चतुरा निकट में रह करके सब प्रकार से उनके सेवा करूंगी। किशोरी मत मान अपने को मैं किशोरी रूप में देखती हूं, और परकिया रूप में अपने को देख करके कब श्रीमती जी की ऐसी सेवा करूंगी जैसे प्रसन्न होकर के हमारे लिए ये सब प्रदान कर। यहां पर कह रहे हैं सिद्ध दहे गोपियानी श्री राधिका रखने पर भक्त विनोद ठाकुर जी अपने लिए कह रहे हैं, सिद्ध देने में गोपी हूं और राधा जी की प्रिय किंकरी हूं। राधा जी अपने प्रसादी वस्त्रों को मेरे लिए प्रदान करें और मैं उन्हें धारण कर लूंगा, अपने सिर पर अपने भंगों पर धारण करूंगा। गृहपति परिचर्या किशोरी बैठ परिहर घर में पतियों को वंचना करके मैं किशोरी उम्र में राधा जी की कुंज में कब मैं दिन रात उनकी सेवा करूंगी, ऐसी भावना ये करें ये सिद्ध दे का अपना। बस इतने ही में मैं आगे चलू। यदि कोई व्यक्ति इस भाव में हो गया उसको ये सब भाव आ गए तो कौन सी प्रणाली का अवलंबन करके जिसको ये सब भाव आए, प्रणाली को वो बतला रहे हैं रूप को सारी उसी को ये उपदेशा मृत्यु से इन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर। यदि राय का भजन कर रागानु का भजन करना चाहते हो तो इस पथ को जरूर अवलंबन करना पड़ेगा, तभी ये भाव आएगा। तन्नाम रूप चरिता सुखिंदा स्मृत्या प्रमेण रचना मनसी कारण तन्नाम रूप चलता है। ये समस्त उपदेशों का ये सार है। नाम तो सभी करते हैं और वृंदावन में भी रहते हैं, किंतु किस प्रकार से वृंदावन में रहना चाहिए, कैसे नाम करना चाहिए, इसके ऊपर में लोग करते हैं। वृंदावन में बहुत सब रहते हैं लोग, रिक्शे वाले से लेकर के ठक ठाकुर चोर सब वहां पर रहते हैं और सभी लोग नाम भी करते हैं, किंतु कह रहे हैं उसको स्वामी जैसे नियम के अनुसार में यह नाम कर, कैसे नियम इसके लिए बता रहे हैं। इसके लिए पहले कितना 8 या 9 श्लोक बतला दें, ये कितना है 8वां, ये 8वां श्लोक। 8 इसके पहले श्लोक बोल दिए, आप तब ये 8वां या 9वां ये बतला पहले बतला है कि कैसे अनर्थ दूर करो, भक्ति के लिए जो दोष युक्त चीजें हैं उनको दूर करो। एक आदमी दिन रात सेवा करता है किंतु पाठ में सो जाता है तो वो क्या होगा बतलाओ, तो तुम्हारा क्या नाम है राधारम, वो गति इसकी क्या होगी, उसको भक्ति मिल जाएगी ना, सब उसकी सिद्धि हो जाएगी। धीरे धीरे नींद बढ़ती चली जाएगी, बस हो जाएगी, फिर कहेगा कि घर में सोएंगे पलंग के ऊपर।
व्यक्ति
होता तो ज्ञान में अधिकार नहीं और भक्ति में, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको इसका क्योंकि
यदि वो नहीं करेंगे
उसमें
और दोष
इसमें दोष हो गया, जो भक्ति उस सब कर्म के अधीन, ऐसा नहीं, जो जिस अवस्था में वहीं से नाम करे आरंभ कर। भगवान की कथा सुन, इसमें कोई अधिकार की कोई जरूरत नहीं, श्रद्धा को विषय और सुनते सुनते श्रद्धा भी आ जाए, चित्त शुद्धि नहीं होने पर भी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भक्ति का अधिकारी नहीं, भक्ति में सभी गुणों का अधिकार है। नहीं तो अजानी जैसे व्यक्ति, वाल्मीकि जैसे व्यक्ति और हम लोग जैसे व्यक्ति, हम लोग भक्ति में अधिकारी थे, जो इधर में थोड़े थोड़े शुरू करें
सेवा करते
तो भक्ति में, अरे भक्ति आएगी कि सेवा आएगा,
सेवा जानेगी पहले,
ना पहले सेवा आएगी ना भक्ति आएगी, कौन आएगा
भक्ति पहले, तो है नहीं तो अभी भक्ति कहाँ,
क्या है वो विष्णु विपरीतम, तो हम गजे को जब ये कहे कोई ये पहले भक्ति में अधिकार हम लाभ करने के लिए चित्त शुद्धि करके पहले निष्काम कर्म करेंगे तब फिर भक्ति करेंगे, तो भक्ति की अपेक्षा हो गई तो फिर भक्ति इस जैसा जो जिस अवस्था में है वहीं से ये सुने जो भक्ति से तुम्हारा मंगल होगा, ये जहां थोड़ा सा उस नहीं बस वहीं से जिस अवस्था जगाई मधाई चित्त शुद्धि नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक तो उनकी अहत की भक्ति प्रधान रूप में भी दूसरे जीव हैं, इसके लिए अधिकार की जरूरत नहीं, जो जहां पर है वहीं से भक्ति, बस नाम करने में जब नाम करें या कहीं कथा हो रही है वहां जाकर के बैठ गया, सुनने लग गया और सुनते सुनते बस उसमें जो नाम कीर्तन हुआ वो भी सुना, हरी कथा सुना, बस उसी से सत्ता जमेगी, उसी से भक्ति का अधिकार, इसे भक्ति कभी भी निष्काम कर्म के द्वारा चित्त नहीं होने पर ही वो होगी।
अच्छा, किसी व्यक्ति को यदि कह दिया जाए इसी सिद्धांत के आधार पर,
वो दिन रात एक बार तुम दिन भर में एक बार सवेरे उठ करके कर एक नाम करो, एक लाख मत पालो करो तो घबरा जाएगा, तो जैसे एक नाम
करो ना भक्ति गंगा है तो भजन करना है, भक्ति करना है, उसे यदि कहा जाए अच्छा चुपचाप बैठ के माला जब
ऐसा क्यों कहेगा,
कर सकता है
नहीं, ऐसा कर मन से फल से बल से उसको घर में ला, उससे मत कहोगे भजन करना है, उससे मत कहोगेगा भजन करना, थोड़ा सा देखो भाई इसको थोड़ा सा मिठाई दे दो, बच्चे को मिठाई देना, उसको प्रसाद भी नहीं करता है और प्रसाद उसको, ऐसे ही उसको छल बल कल से किसी प्रकार से संत लोग जो हैं वो न कर्म न बुद्धि उनका बुद्धि भेद नहीं करते, एक लाख नाम करेगा तब इसमें आएगा, पहले तुम शुद्ध हो करके अच्छे नाम करो और इसको छोड़ो, जल्दी जल्दी छोड़ो, नाम ऐसे कह दिया, अरे हरे कृष्ण करना और सदाचार अवलंबन करते रहना, धीरे धीरे करने लगा, कुछ दिनों के बाद में बुला करके उसको विधिवत कराता है, फिर धीरे धीरे यहां पर जबकि काय मनो वाक्य इत्यादि को दमन कर लिया, मन वेग क्रोध वेग जीवा वेग उदर वेग उपस्थ वेग सबको उसने दमन कर लिया, हल्लम कर रहा है, हरि कथा श्रवण कर रहा है और इनको धीरे 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 ये दूर कर रहा है, ऐसा नहीं कि पहले मन बात और ये सब जितने हैं छह वेद को पहले दमन करके तब गुरु के पास में जाओ और तब हरिना पड़ो, ऐसा नहीं कही तब तक फिर भक्ति गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहां से जो अवस्था है प्रत्यक्ष में भक्ति उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती साथ में माधुर्य साथ जंगली में ऐसा जो भी अवस्था में वहीं से आरंभ करूंगा, फिर प्रारंभ करके अब मैं वह नहीं करूंगा ऐसा तो कहना ही पड़ेगा, उन चीजों को दूर करना पड़ेगा, धीरे धीरे उसमें शक्ति आएगी और वो दूर करने लगे, और ऐसे दूर कर लेंगे तो कभी जन जन्मांतर में वो चीजें दूर नहीं है, तथे सौ दोषों को प्रत्याग करो, प्रत्याहार प्रयास जल को मात्र जनसंघर्ष लौलन कर सभी भक्ति उनसे भक्ति विनाश, फिर छ गुणों को धारण करो, उत्साह त्रिष्या धैर्या तत्सत कर्म प्रवर्तना संग त्यागा प्रतोवृत्ति सर्वे भक्ति, फिर वैष्णव का संग करो, सदा प्रतिग्रहनाथ भोजन मात्रा भूमते भोजन जैव सर्विधम, ये पहले छह प्रकार का संग करो भाई, और फिर देखो निंदा उंदा मत करना, कृष्णी जस्य मनसा
मनसा गिरी
दीक्षा के प्रणत भजन तमी संसुष्या भजन भीष्य मनम जमन निंदा शून्य शुद्ध मत, वैष्णव की निंदा मत करना, गुरु वैष्णव की निंदा नहीं करना, संबंध ज्ञान के करीब जो वैष्णव भजन कर रहे हैं उनको मन से पहले आदर करो, और फिर जो अनर्थ दूर करके आप निष्ठ भगवान के भजन में निष्ठ हो रहे हैं उनकी सेवा करो और प्रणाम भी करो, और जो अष्टकाली लीला में चिंतन में जुड़े हैं जो किसी की निंदा वंदना नहीं करते, स्वाभाविक रूप से भजन में जिनकी प्रवृत्ति हो गई है, जिनके संग से मनुष्य मात्र ही उनका कल्याण होकर के भक्ति में प्रविष्ट कर सकता है, ऐसे उत्तम महाभागवतों का संग अपना प्राण प्रिय मान करके तन मन वचन सब प्रकार से दंड प्रणति और उनकी सेवा परिचर्या सब प्रकार से उनकी सेवा, अब सेवा करने लायक इन कभी नाम में रुचि नहीं हो रही है और हरि कथा श्रवण में भी रुचि नहीं हो रही है, तब क्या करेगा, नाम तो करता है एक लाख या 75,000 या 16,000 करता है किंतु रुचि नहीं है, हरि कथा में भी रुचि नहीं आती नहीं जाती है, तब क्या करें, वही करो
छत्तीस नाम चरित्रा विद्या पुत्र रचना
हो जाएगा करो, अब इसके बाद में तब ये श्लोक आया, तन्नाम रूप चरितादि सुख तनानु, भगवान के अपने भावों के अनुकूल,
भागवत के श्लोकों में तो और कहेंगे कि सुश्रूषुर सभ्रधान वासुदेव तथा सेवया पुण्य तीर्थ निशे बना, कि पहले तीर्थों में जाए, तीर्थों में जाने से साधु संतो होगा, साधु संतों की सेवा करेंगे तो सेवा करते करते भगवान की कथा में रुचि,
ये ऐसी बात कोई दुराचारी व्यक्ति
कैसे रुचि हो जाए,
मान लो कोई दुराचार्य उसको शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे जहां पर साधु लोग रहते हैं वहां जाओ, तो जहां साधु रहते हैं उनका नाम क्या है,
उन्नति तो सावना बोला
है, वहां पर जाओ, वहां पर हरी कथा होगी, सुनकर से धीरे धीरे चित्त शुद्धि होने लगे, नाम के श्रवण से, कीर्तन के श्रवण से, हरि कथा श्रवण से होने लगे, और फिर धीरे 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 तुम्हारी रुचि होने लग जाएगी, फिर धीरे धीरे पत्थर बढ़ जाएगी, सभी कार्य के साथ पत्नी को चाहिए। तन नाम रूप चलता आदि सुकृत तनानी, अपने भावों के अनुकूल विशेष करके इसमें बहुत सी बातें छिपी हुई, अनुकूल बने क्या, अब यहीं पर स्वाभिष्ट स्वाभिष्टमय
भावमय
भावमय भाव संबंधी भावानुकूल भाव अविरुद्ध भाव क्या चीजों को ग्रहण करो, अपना एक भाव यहां तक आ गया, भाव जिसका जैसा है, जिसका जो स्थायी भाव जैसा कुछ है वो भाव गया, और उसके बाद में श्रवण कीर्तन करने लगा उसी भाव के अनुरूप, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम सब बंदनम, वंदना करता है तो क्या, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते वो बेश वो विकास शांत यहां तक महाप्रभु की वंदना करता है, अपने भावों को भी महाप्रभु जी करता है, कैसा वंदना कर अनर्पित करी चिराग करुणिया बतो न करो ये करेगा, या और उनकी वंदना नित्यानंद की भी वंदना करेगा तो वो क्या, रसा नाम आधार अमृतिक बरसद वैष्णव धनम, रसा रसा नाम आधार अमृतिक बरसद वैष्णव धनम, रसाधारम सारम पतित तत्कारण स्मरण का परम नित्यानंदा कथम जम पढ़त तुलसी का तुलसी की वंदना करें, हे तुलसी जी राधा कृष्ण के चरणों में हमको प्रेमा भक्त, जो कुछ भी वंदना करें कृष्ण से वंदना कर रहे हैं तो कृष्ण से वंदना हम क्या करें, श्याम सुंदर सिखंड से कृष्ण रहा स्मुरली मनोहर राधिका रसिक मन कृपांग दे स्वप्रिया चरण क्यों करी तुम, तुलमासी जी से प्रार्थना करते हैं, वृंदावन से प्रार्थना करते हैं, जहां भी प्रार्थना करेंगे अपने भाव के अनुकूल से ही उनकी प्रार्थना करें, ये एक बतला है, उसी तरह से राधा कृष्ण के नाम का कीर्तन करना है तो कौन सा कीर्तन करें, शंकाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं ये करेंगे ना, मैं क्या करेंगे, ऐसा नहीं, अपने भावों के अनुकूल सब करो, इसलिए कहते हैं तन नाम रूप चरिता, उनका नाम रूप गुण लीला ये अपने भावमयी जो भक्ति है उसके अनुकूल करो, और जो उसके भाव संबंधी है ये करो, और उसके अनुकूल को भी करो, अनुकूल क्या है,
गुरु पद
तिरक धारण गले में माला रखो, शिखा भी धारण, वैष्णव के चिन्ह जो है, ठाकुर जी का माला है उसको गुतरा हुआ उसको ग्रहण, हमें तो ले आए आकर के जब देने लगा तो उसे सम्मान और भीम जैसा युद्ध कर दो, वो लेगा नहीं और हम लेने नहीं देंगे, तुम कैसे पहना देगा, घर का दस्ती होने लग गई, ऐसा मत करो, खबर था जब आ रहे तो सुनिए आज भगवान की कितनी बड़ी भारी कृपा है जो हमारे गले में ठाकुर जी की पहने ही माला, वहां पर कुछ दिन लड़ो मत, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ठाकुर जी का कोई वस्त्र है, ठाकुर जी का वो आरती है, ये सब ग्रहण करते हैं, ये सब भक्ति के अनुकूल है, और जो भक्ति के अनुकूल भी नहीं है प्रतिकूल भी नहीं है उनको क्या करेगा, जैसे पुराण कथा का आंवला का पेड़ है उसकी पूजा है, अश्वत्थ का पेड़ पीपल का पेड़ है उसकी पूजा करना है, हर भी नहीं है पूजा करने, तो हम व्रत का समय नष्ट करने क्यों जाए, हम क्यों नहीं तुलसी जी के पूजा करें, जो हमारे अनुकूल है बस वहीं पर लेंगे, आज जो विरुद्ध है उसमें कभी भी ऐसी प्रतिज्ञा करो धर्म में नहीं जाएंगे, यद्यपि वो भक्ति का एक भी एक भाग है, मत जाओ उधर, वार्तादान तो कहा गया वैसे ही कितनी चीजें हैं। एक आदमी भगवान का भजन कर रहा है कृष्ण राधा जी का, कहा जी देखो तुमको ब्लड प्रेशर है, तुम ये रुद्राक्ष की माला पहन लेना, उसका पानी पी लेना और उसको सब समय गले में धारण करना, तो वो पानी आएगा तो तुम्हारा सब दूर हो जाएगा, तो पान लेगा ना। हाँ पान लेना, ये भक्ति का अनुकूल हो जाए, नहीं खबरदार, इसलिए ये सब चीजों से दूर रहना है। कृष्ण भक्ति में विशेषकर इस भाव में जो जोर हुई है वैसे ही ये सब करना चाहिए। जीवा के द्वारा नाम, मन के द्वारा चित्तों का स्मरण, देखो ये संवाद है याद है। तो मन और रचना को नियोग करना है, मन सब समय नियुक्त रहे कहां, कृष्ण की चिंताओं में व्यस्त रहे। जो भागवत से हमने जो पढ़ा है दसम स्कंद से प्रारंभ से और विशेष करके 47 अध्याय का 47 इसका सब समय अनुशीलन करें, और यदि 47 के बाद में आरंभ किया 47 से 90 तक तो फिर क्या हुआ, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ उसको छोड़ करते उससे बाबा जी के साथ छोड़ करते, इसे मन और जीवा को लगाना चाहिए। जीवा करेगी भगवान का नाम गुण कीर्तन, और मन करेगा चिंतन उसी का, अनेक हरि नाम की माला लेकर के संसारिक चिंतन में करने लगे, जो जो कुछ सुना इधर उधर की बस वही चिंतन तब नहीं होगा। इसलिए स्वरूपत और आसक्ति दोनों को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ करके तब निरपेक्ष भजन होगा, ऐसे नहीं होगा। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक बनासन धर्म में रह करके अभ्यास करते हुए चलो। तिष्ठन ब्रजे, हम अपने घर में रहेंगे गांव में रहेंगे नहीं, तिष्ठन ब्रजे ब्रज में रहना पड़ेगा। कहां रहना पड़ेगा, तदानुगामी जनानुगामी उन भगवान के जो पड़े प्रिय अनुरक्त रसिक वैष्णव हैं, अनुराग जिनको अनुराग हो गया है, ऐसे भक्त लोग जहां पर रहते हैं ब्रज में, उनके अनुगामी होकर के ये नाम कीर्तन और स्मरण करें, अकेले रह करके नहीं। इसलिए ब्रज में रहेंगे और उनके अनुगत में होकर के रहेंगे चलेंगे, वो कैसे भजन करते हैं ऐसे ही हम भी भजन। वो कहेंगे ये देखो हम जो कहते हैं वैसा करो, और जब प्रभु करेंगे तो वही जो मैं जानता हूं और जो कहता हूं, किंतु आपके पास ही रहूंगा, हमको जो जो चीज की जरूरत हो वो दे देना, किंतु करूंगा वही जो मेरा मन करेगा, तब का नहीं जानूंगा। अपनी समस्त भावों को छोड़ करके उनके भावों का कैसे भजन करते हैं, किस भाव से मैंने समय से भी, और उनकी भाव कैसा कृष्ण के प्रति है, उस भाव को ग्रहण करके, और जैसे वो रात में उठ करके भजन करते हैं, सब चिंताओं को दूर करके करते हैं, ऐसे ही राधा कृष्ण में भाव से युक्त होकर के करते हैं, ऐसे भजन की शिक्षा की जरूरत है, जो उनके भावों को ग्रहण कर सके। पदानुगामी वृंदावन में रहते हुए यदि शरीर के द्वारा संभव पर नहीं है, किंतु अलग से भी हम रहते हैं, तो उसमें वैष्णव के अनुगत में तो जरूर रहना पड़ेगा, और वैसे ही भजन साधन करना पड़ेगा। कुछ दिन में भगवान अनुग्रह करके तुमको ब्रज में वृंदावन में भी बात दे, ब्रज में भी बात दे। जैसे रूप सनातन जी जब बृहत वहां राम के लिए गांव में रहते थे, राजा के प्रधान वजीरे होकर, प्रधानमंत्री और क्या क्या मंत्री होकर तो वहीं रहते थे, किंतु वृंदावन वहीं पर उसकी जन कर दिया, राधा कुंड श्याम कुंड और कदम के थे और कमाल के थे, ये सब को रथ बना करके और वहीं पर भजन करते थे उसी भाव में, और भगवान ने बहुत सहा कि कुछ दिनों के बाद में वृंदावन में
कालम नये, जो लोग ऐसे करते हुए अपने कालों को गवाते हैं, ऐसे भजन परायण रह करके दिन रात उनके भजन चिंतन में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए अखिलान उपदेश सार, ये समस्त उपदेशों का ये सार है। ऐसे ही करने से भगवान की प्राप्ति, उनकी प्रेमा भक्ति लाभ होती है, इसे बढ़ करके और कोई दूसरा उपदेश। इसलिए इस श्लोक को बार बार पढ़ करके ठीक ऐसे भी अपनी चित्त वृत्ति को पाने की बनाने की चेष्टा करते हैं। आज यही तक है,
अंगश्यामलिंचताभिरभितो मंदे कृतेन्दीवरम् जड्जं जगुदरोति संविदधतमपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनम् हृदिदसद्गामाभिरामोदरम् राधा सन्तुष्टे काम मध्ये शरण प्रपन्न वृंदे नमस्ते राधिकाय सदाये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय यं प्रप्रजन्तं दैताय नो विरहता तर्याजुहाव पुत्रेति तन्मय सया सर्वो भेदो तवैवास्मि भजन रहस्य अष्टम ज्ञान इसमें हम लोग छह श्लोक अभी हम लोगों ने पाठ किया। इस छठवें श्लोक में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी भजन का रहस्य, कैसे भजन करना चाहिए, उसका सार रख रहे हैं। परसों इसके संबंध में कुछ बताया। ये उपदेश अमृत का श्लोक है। सबसे पहले कैसे यदि भजन करना है तो हमने बताया था, बाक बे क्रोध बे जीवा बे गर बे पस्त बे सबको संभालना। विशेष करके बाक बे, जब तक इसको वचन पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये भजन में विघ्न वेश बन पाएगा। दूसरों के द्वारा जो दुख आते हैं वो ये मत समझो कि वो दूसरे के तरफ से आ रहे, इसलिए उद्विग्न मत हो। स्वाभाविक है ऐसा होना, उद्विग्न हम हो जाएंगे, किंतु उद्विग्न होना नहीं चाहिए। जिसको भजन करो उसको सह लेना चाहिए। भजन राज्य में सहिष्णु होना अत्यंत आवश्यक। जो लोग सहिष्णु नहीं होंगे उनको शारीरिक क्लेश मानसिक क्लेश और सब आएंगे, ये कोई रोक नहीं सकता, उसी से हमारा ये शरीर बना है, इसलिए जरूर आएंगे ही, उसको रोकने की चेष्टा करनी चाहिए। और नहीं तो चित्त चंचल हो जाएगा तो भजन से हमारा छुटकारा भी हो जाएगा और भजन भी नहीं हो सकता। प्राचीन काल की एक कथा है, सुनाया था भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों और द्रौपदी को, तो उसको आप लोग सभी याद रखें, याद नहीं अपने काम में लाने की चेष्टा करेंगे। पांचों पांडव लोग विशेष करके महाराज युधिष्ठिर बड़े शोक में अभिभूत हो रहे हैं, मेरे वजह से अकारण ही हमारे कौरव भाइयों का और संबंधी कुटुंब, मामा चाचा ताऊ उनके लड़के सब एकदम मारे गए और कौरव और पांडव कुल की समस्त स्त्रियां सब विधवा, एक दो नहीं करोड़ों करोड़ों, 11 अक्षों ही कौरों की और 9 या 8 अक्षों, 7 अक्षों ही पांडवों की, तो 7 और 11, 18 अक्षों ही सेना, ये सब काटे गए। केवल 5ों पांडव कृष्ण और परीक्षित तो गर्भ में रहे, वो गर्भ में रहते और उधर में द्रोणा अक्षस्थाना पंडाचार्य और एक कृतवर्मा, बस ये 3 वीर उधर और इधर में 5 और कृष्ण को लेकर के 6 और कुछ लोग बचे गए, इधर के कुछ लोग बचे गए और बाकी सब जिनकी स्त्रियां थी सब विधवा हो। उस समय क्या स्थिति होगी स्त्रियों का रोना थी, वो करेंगे ये मेरे लिए हुआ, मैं यदि अपने भाइयों को मना कर देता ये युद्ध मत करो हम लोग निकल जाएं कहीं अपना जीवन निर्वाह हो जाएगा, तो ये रक्त और ये सब कैसे होता, ये कुछ नहीं होता पच जाए, किंतु हमने राज्य के लिए ऐसा, वो लोग तो तैयार भी नहीं थे, पीछे से कृष्ण ने उनको थोड़ा सा कहा नहीं युद्ध करना है धर्म के लिए युद्ध करो, तो उनके कहने से अब उनका जब नतीजा आया, जब वहां पर देखा जो हस्तिनापुर की स्त्रियां विधवा हो गई हैं, लड़के लवारिस हो गए, उनको पालन पोषण करने वाला है, उनको देख करके बड़े मधुर पर करके खाना पीना छोड़ करके बड़े शोक, पांडव लोग भी वैसे ही, द्रौपदी भी वैसे ही, कुछ ने कुछ समझाने की चेष्टा की किंतु समझ में कुछ नहीं, कृष्ण ने छोड़ दिया। तो चलो भीष्म पितामह जी आजकल में आप जाने वाले उनका समय हो गया है, इसलिए चलो उनको हम लोग दर्शन करें, बस इसी बहाने से 5ों पांडवों को द्रौपदी को लेकर के वहां पर पहुंचे, पहुंच करके सब लोगों ने उनको प्रणाम किया, भीष्म पितामह ने अपनी दृष्टि से ही कृष्ण को प्रणाम किया और इशारा किया कि आप हमारे आंखों के सामने हमारे पास में बैठे और 5ों पांडव उनके पैर की तरफ में बैठे और ये उनकी वस्तक्षल के सामने जैसे कि उनकी दृष्टि कृष्ण पर लगी रहे एकदम पास में बैठे, सिर्फ इधर नहीं सामने से कृष्ण दिखाई पड़े इस तरह से और 5ों पांडवों को द्रौपदी को पैर की तरफ। इसके बाद में युधिष्ठिर कृष्ण ने कहा जी ये बड़े दुखी हैं, आप इनको कुछ सांत्वना दी, वो हंसने लगे मैं इनको सांत्वना, जहां आप विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक ज्ञान के मूल आधार ज्ञान स्वरूपा और मैं इनको उपदेश फिर भी आपका आदेश ये स्वीकार है, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं कहेंगे वैसा ही क्या दूंगा, ऐसा कह करके युधिष्ठिर को किस लिए शोक हो रहा है कृष्ण ने स्वयं प्रश्न किया उनसे, आप इसको इस विषय पर समझाइए। ये लोग दुखी उन्होंने कहा जब गाना आरंभ किया तो हमें कृष्ण को प्रणाम किया और पांडवों को संतना दे करके कुछ करने लगे तो द्रौपदी ने कुछ हंस दिया और उसने कहा कि कुलगभु आज तक तो हमारे सामने कभी हंसी नहीं, आज ये हंस रही है, पूछा जी बेटी किस लिए हंस रही है, तो वो हाथ जोड़ करके बोली पितामह जी तो उनके कौन ससुर के क्या लगेगी,
दादाजी
ये जो आज आप ज्ञान जो दे रहे हैं ये सब ज्ञान उस दिन आपका कहां चला गया था जिस दिन मेरा कीर्तन हो रहा था, उस दिन तो आपका सिर ऐसे से ऐसे नहीं हुआ, क्यों ऐसा आपने किया? उस दिन तो ये ज्ञान दे सकते थे दोनों लोगों को, और आप यदि चाहते तो ये महाभारत युद्ध भी बंद हो जाता, तो आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए मैं हंसरण जो आज ज्ञान का उपदेश करें, आज वो ज्ञान कहां निकालू? तो पहले इसी का उत्तर उन्होंने दिया, मैं दुराचारी लोगों का अन्न खा रहा था और धार्मिक लोगों का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी दुर्बुद्धि हो गई, इसलिए मुझमें इतना साहस नहीं था कि मैं सच का पालन कर सकूं और सत्य बातों का उपदेश कर सकूं, साहस नहीं था। जैसे डिस्ट्रिक्ट जज है, किसी से 1,00,000 रुपया पूछ ले लिया, अब उनको सहायता है कि सत्य बात का निपटारा कर दें और सब कुछ में अच्छा जजमेंट दे दें, ये कभी संभव पर नहीं हो सकता। इसलिए उन्हीं का खाते 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 हमारे से हमारी दिल, ये किंतु भीष्म पितामह के लिए परम सत्य नहीं है। ये बात बहुत ठीक है साधारण हम लोगों के लिए, यदि हम लोग जिसका जैसा अन्न खाएंगे हमारी दुर्बुद्धि वैसे ही हो जाएगी, किंतु भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी और परम भगवत भक्त के लिए ऐसा संभव कर नहीं, उन्होंने ऐसा दिखलाया। वो तो ज्ञानी थे, सर्वज्ञ एक तरह से थे, इसलिए उन्होंने कृष्ण की इच्छा समझी, यदि मैं कौरवों की तरफ से नहीं रहूंगा तो हमारे इष्ट देव जो कृष्ण है उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, पातिताइयों का पता नहीं हो सकेगा, पृथ्वी का भार हरण नहीं होगा, इसलिए जैसे शंकर जी कृष्ण की इच्छा को पूर्ति करते हैं शंकराचार्य बन करके और मायावाद का प्रचार करते हैं, आप एक बात का प्रचार करते हैं, अरे हम ही सभी ब्रह्म है ऐसे, ये शिव जी का अपना विचार नहीं है, दुष्टों को असुरों को मोहन करने के लिए ऐसा करते हैं, इसलिए भीष्म पितामह जी परम भगवत भक्त हैं, दुष्टों का भी अन्न वो नहीं भी खा सकते थे, किंतु उन्होंने देखा कि तब कृष्ण की इच्छा पूर्ण नहीं होगी, हमारे बल पर ही ये लड़ रहे हैं और तभी इनका ध्वंस होगा, दोनों तरफ में जो आधारभूत होगा, अन्यथा पृथ्वी का भार उतरेगा नहीं, इसलिए कृष्ण की इच्छा जान करके समझ रहे थे कि हमारी निंदा होगी, तो भी उन्होंने इसलिए वो केवल इतना ही कहा कि मैं दुष्टों का अन्न खा करके मेरा मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, और ऐसा जी गोस्वामी ने कहा ये लड़ते समय में किसी कारण से उसमें असुरों का प्रवेश हो गया था, इसलिए आत्मिक कार्य उन्होंने किया भगवान के ऊपर में बांध दिया। इसके बाद में फिर उन्होंने बताया देखो युधिष्ठिर महाराज जी, एक आपको इस विषय में बात सुनाता हूं, कहानी छोटी सी। सभी व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, किंतु ये समझ लेना भक्तों के लिए ये बात नहीं है, भक्तों का कोई कर्म नहीं होता है, किंतु भक्त भक्त होना चाहिए, अभी कर्मी रह करके भी भक्ति होने का जो मैं भक्त हूं ऐसा अभिमान करता है तो नहीं होगा, सज्जाथ में भक्ति नाम तो होना चाहिए ना, नमापराध को जिसने भी मान लिया कि यह नाम है तो उसे तो नमापराध से नहीं हो, अंततः नमाभक्त होना चाहिए, तो हम लोग तो अधिकांश नमापराध करते हैं, नमाभास कभी कभी हम लोग कर पाते हैं, इसलिए नमापराध से तो और अपराध बढ़ जाएगा, किंतु हाँ नमापराध जो करने वाले व्यक्ति हैं उनमें यदि श्रद्धा है तो जैसे भूमि में गिर जाने से भूमि अवलंबन है, उसी प्रकार से निरंतर नाम करते 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 अपराध भी दूर हो जाएगा और नमाभास भी दूर हो जाएगा, अंत में शुद्ध नाम हो जाएगा। वैष्णव के आश्रम में यदि करेगा तो वो सुधार नहीं, और स्वतंत्र होकर के हम करेंगे तो लाखों जन्म में भी वो सुधार नहीं, गुरु भी ऐसा होना चाहिए वैष्णव भी ऐसा होना चाहिए जो कि नामापराध नहीं करते हैं शुद्ध नाम करते हैं, उनका आश्रय ग्रहण करने से न था अपने बल पर हम नहीं कर सकते, तो साधारण लोगों का ये विचार वो दे रहे हैं कि देखो एक ब्राह्मणी थी, पति उसके मारे गए, उसका एक लड़का था, वो बड़ा होते 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 9-10-12 वर्ष का वो ब्राह्मण के पास में कुछ अधिक जीवन निर्वाह करने की कोई बात नहीं थी। साधारण रूप में वो अपना रहती, कहीं से अपना कुछ ला लेती और एक गैया पाल रखा था और उसे अपना जीवन निर्वाह किसी प्रकार से वो कर रही। और वो लड़का था, वो पूजा करती थी ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी की पूजा करते करते एक दिन बच्चे बेटे को कहा कि बेटा आज फूल घर में नहीं है, पासी में ये बगीचा है वहां से फूल ले। अभी पौ फटने वाली थी और थोड़ा थोड़ा अभी अंधकार था, थोड़ा थोड़ा वो फूल लाने के लिए चला गया और वहां पर पहुंचते ही जब फूल चुनने लगा, चयन करने लगा, एक कृष्ण सर्प निकला और उसको लेकर के इतने जोर से दशा की वो एकदम साथी साथ में उसका शरीर काला पड़ गया और वो साथी साथ मरने के बाद गिर गया। इतने में उसी समय में एक बहेलिया जा रहा था कहीं जंगल में चिड़ियों को पकड़ने के लिए या किसी शिकार के लिए वो जा रहा था। उसने देखा जा रही, देखो तो ये सर्प ने हमारे देखते देखते ऐसा थम किया और उसको काट दिया, बच्चे तो देखा नहीं और इसके बाद में ये मर गया। उस बच्चे को और उसकी मैया को पहले से जानता था, इसलिए उस सांप को पहले मंत्र से अभिभूत करके और उसको पकड़ दिया और पकड़ करके एक घड़े में उसको बंद कर दिया या झपोली होती है उसमें बंद करके उसका खड़े का मुख बंद करके
काका ये मर गया और उस लाश को नीचे रख दिया। मैया को छाया करती 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 बिना करने एक ही हमारी संगीत डाल लगी बस रोने लग गई। जब उसका रोना कुछ कम हुआ तो वो कह रहे थे देखो मैया कि सांप ने अकारण ही इसको काटा, इसको पर भी नहीं रखा, इसको कुछ छेड़ा भी नहीं, फिर भी काट दिया। तुम आदेश दे दो इस विषक्त जीव को जो खल है इसको मैं मार दू, मैं इसे बोटी बोटी काट करके और आग में भी जा। भैया ने आंखों के आंसू पूछते हो कहा बेटा ये तो बताओ इस सब को जला देने से, मार डालने से और जला देने से हमारा बेटा चला आएगा तो नहीं? भैया ये तो नहीं आएगा, तो कुछ उसको मारो मत, वो प्राणी है, काट दिया तो काट, उसका स्वभाव है ऐसा, काट दिया। नहीं मैया तुम्हारे बेटे को आज काटा है, कल दूसरे को काटेगा, तीसरे को काटेगा, चौथे को काटेगा, बिना कारण ही ये दसने वाले हैं, इन खलों को मार डालना चाहिए, दीमक है, चूहे हैं, सर्प है,
खटमल है
और खटमल है, ये बिना किसी कारण के लोगों का अनिष्ट करने वाले ये जानवर है और आदमियों को देख करके भागते हैं, बड़े डरते हैं आदमियों से, तो इसलिए ये खलों को विनाश कर देना, नहीं तो दूसरे को कल काटेगा। अजय मैया बेटा तुम जैसे इसको छोड़, हमारा बेटा इसे नहीं आएगा, आज जिसको काटना है तो आज तक किसी को क्यों नहीं काटा जो आज काट दिया, तुम इसको छोड़। तो उसने कहा कि आप कहने से भी मैं नहीं मानता, इस बदमाश को दुष्ट को मैं अभी काटता काट करके और जला देता हूं। जब प्रस्तुत होने लगा तो इतने में सांप ने कहा भैया हमको बेकार का क्यों मार रहा है, मैं भी थोड़े इसको कर रहा, काल ने हमें प्रेरित किया इसलिए काल के कहने से हमने, इतने में काल आ गए, अरे तू हमको क्यों दोष देता है, मैंने क्या किया, मेरा इसमें कुछ दोष नहीं है। सांप कहता है ये
काल
ना, ना, काल वो नहीं, वो सफेरा बैलिया, बैलिया कहते देखो काल ने किया या तुमने किया मैं ये नहीं जानता, तुमने क्यों काटा, काल किसी के कहने से तुम किसी को मार डालेगा, काल ने तुमको आदेश दिया तुमने काटा, इसलिए वो दोषी है तुम भी दोषी, इसे तुमको भी नहीं हम छोड़े।
इसीलिए तुमको पसंद करते हैं। क्यों हमको तंग करता है, हम अपने आप नहीं काटा, इतने में काल आ जाए, वो कहता है सांप को जो हमको क्यों दोष देता है, अरे हमने थोड़े किया, काल माने क्या, काल कहता है किसको, अपने किए हुए कर्मे को फल को काल कहते हैं, ये काल होता है, ये सब कुछ जो होता है, ये जन्म होता है काल से, दुख भोगते हैं काल से, मरते हैं काल से, बिना काल का कोई भी चीज नहीं होता है, काल से हम वृद्ध होते हैं, अर्थात अपने कर्मों से कोई 50 वर्ष में बूढ़ा हो जाता है, कोई 100 वर्ष में एकदम दंड रहता है, ऐसा क्यों होता है, इसमें दूसरा कोई भी दोषी नहीं, इसलिए इसने अर्थात उस लड़के ने इसको मारा था, और मारने के वजह से वही मारा हुआ फल उस पर लगा, उसका काल वो बना, आज वही ये सर्प काल से प्रेरित, से कर्म से प्रेरित होकर तो आज इसको कहा, इसलिए मैं दोषी नहीं, दोषी है इसका कर्म, ये खुद ही उसके लिए दोषी है, अपनी मृत्यु का कारण है, इसलिए महाभारत युद्ध में जो लोग मरे हैं आप उसके लिए कारण नहीं है, उसके लिए कारण कौन है, वो व्यक्ति ही उसके लिए, इसलिए हमारे ऊपर में यदि कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तो उसको ये समझना है कि हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कर्म है, इसलिए वो भुगतने पड़ेंगे, तत्व कंपन सुसमित समान भुंजान एवं आत्मकृतम दीपात, आत्मकृतम माने अपने किए हुए कर्म ही अभी हमारे पास में सुख या दुख के रूप में आ रहे, उसको हंसते हुए झोलो अथवा रोते हुए झोलो, झेलना पड़ेगा, और उसी में भक्तों के लिए बतलाया, जब उनका कर्म नहीं है कुछ, भक्त लोग तो कोई कर्म नहीं करते, तो उसके लिए फिर विचार करना पड़ेगा, एवात्म पिताम विपापम विधन नमस्ते तत्ते अनुकंपा तत्ते अनुकंपा, अतः ते वो प्रभु जो है ना, उनकी अनुकंपा से ये दुख तुम में आ रहे हैं, तुम ऐसे ही उतना तुम धुरंधर है कि तुम में दीनता नहीं आती, तुम अकड़ करके चलता है, अकड़ है, किसी की बात नहीं सुनता, बड़ा अभिमानी है, क्रोधी है, तो सुने जाते से नम्र नहीं होगा, इसे भगवान तुम्हारी नम्रता लाने के लिए ये सब उस समय में ऐसा दुख देंगे ये डॉक्टर से ठीक नहीं होगा, अरे और की तो बात साधारण, एक वायु का रोग जब गठिया हो गई तो डॉक्टर का बात भी कुछ नहीं करता, साधारण साधारण रोग जब अच्छा होना होगा, जब उसका कर्म ऐसा होगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो वो उसको लेकर के ही जाएगा, ऐसी कितनी ही बीमारियां हैं ये डॉक्टरों को लग जाती है, एक डॉक्टर था कलकत्ते में, हमने देखा वो 1000 रुपया फी लेकर के किसी के घर में जाता था, और उस डॉक्टर को देखा जो वो चल रहे उसको गठिया रोग सब चारों तरफ, उसी में खर्च हो रहा है दूसरे, और वो 1000 रुपया फीस लेता है दूसरों से, तो इसको सहना होता है, और शरीर से जो होता है उसको ठीक करेंगे, ठीक करेंगे, किंतु भगवान ने नम्रता लाने के लिए किया, इसका क्या इलाज है, कुछ होगा नहीं तो तुम तो बड़ा उदंड रहेगा, अपने समान किसी को मानेगा नहीं, इसलिए ये भगवान की कृपा से मिलते, और नहीं तो कर्म हो, इसे दोनों दृष्टियों में कोई दूसरा हमको दुख देने के लिए उसका दायित्व नहीं है, दायित्व हम ही लोग, इसलिए हमने जो किया है उसके अनुसार में भोगते हुए जिस चीज अनुसार में कर्मों से हमारा शरीर बना है, इसी को प्रारब्ध कर्म कहते हैं, इसको तो सहना नहीं होता, दूसरे इसके लिए दायी नहीं, इसे कभी भी अपने दुखों के लिए दूसरों को दायी मत बनाओ, इसने हमारा अपमान किया, इसने हमारा ऐसा किया, इसने हमारा सर्वस्व ले लिया, इसने हमें पीटा, जो परमात्मिक व्यक्ति है इस रूप में समझ करके शांत रह करके भगवान का हर हालत में, तब तो ये व्यक्ति भजन कर सकेगा, अन्यथा वो कभी कर नहीं सकता है, इसलिए ये सब चीजों को लाने की जरूरत है, हमने तभी ये सब चीजें आने पर
काय मन वाक्य इत्यादि जो छह प्रकार के जो तेज हैं उनका हम दमन भगवान के नाम के द्वारा की भक्ति के विचारों से ही दमन और जो बतलाया कल परसों बतलाया था अत्याहार प्रयाहार सस्य बतलाया था भक्ति के प्रतिकूल जितने भी चीजें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा और भक्ति के अनुकूल जो जितने हैं उसको ग्रहण करना पड़ेगा। भक्तों का संग करना पड़ेगा, वैष्णव को यथाजोग्य सम्मान देना पड़ेगा, नाम में रुचि नहीं होने पर भी श्रवण में रुचि नहीं होने पर भी पुनः पुनः श्रवण और कीर्तन करना। गुरु जी ने कहा 1,00,000 नाम करना है हमारी रुचि के लिए, हमको जैसे तैसे करना है यदि भगवान को पाना है, इन नियमों को भी पालन करना पड़ेगा। इसलिए खूब सावधानी के साथ में भक्ति के जितने भी अंग हैं जो हमारे लिए भजन के लिए अनुकूल हैं उनको जरूर पालन करना चाहिए। कब कहते हैं एक श्लोक में सब उपदेशों का साथ बतलाते हुए इसकी भी व्याख्या हमने की थी, तन नाम रूप चरिता सुकृतनामुक्रमी नरसना मनसी स्थल ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम में अखिला। ब्रज में रहेंगे तो कैसे ब्रज में रहेंगे, वैसे रसिक तत्वज्ञ वैष्णव जो हमारे ऊपर अति स्नेहशील हैं ऐसे वैष्णवों के अनुगत्य में रह करके, अनुगत्य किसको कहते हैं, अनुगत्य माने उनके साथ में रहेंगे उनका प्रसाद खाएंगे, ये तो अनुगत्य है नहीं, जैसा वो चाहते हैं उनकी आंतरिक इच्छा है वैसे हम चले, उनके आचार उनके व्यवहार उनके भक्ति के विचार भक्ति के आचरण जिस रूप में हम अधिकारी हैं उस रूप में उसको हम ग्रहण करेंगे भाई, और नहीं करेंगे तो भजन नहीं। ये अनुगत्य का हम करेंगे अपने इच्छा से किंतु रहेंगे उनके साथ में तो ऐसे में उनके आचार विचार व्यवहार को हम सब विषय में ये है अनुगत्य। ऐसे वैष्णवों के अनुगत्य में वृंदावन में हम रहें और अपने भावानुकूल हम लोग श्रवण और कीर्तन स्मरण इत्यादि का भक्ति के जो अंग हैं उसका जो जिस स्टेज में है जिस अधिकार में है अपने अधिकार के अनुरूप में दूसरी कोई अभिलाषा न हृदय में आने पाए, कोई भी अभिलाषा भक्ति के अतिरिक्त। मान लिया कि एक आदमी निरक्षर है, निरक्षर है तो वो भागवत नहीं पढ़ सकता, व्याकरण नहीं जानता, या अच्छा तब वो उसको भक्ति कैसे होगी जो भागवत में है, नहीं हो सकता है। इसीलिए श्रवण का है, श्रवण के द्वारा ऐसा हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि पढ़ने लिखने पर भी वो चीज ना आए भाव, पढ़ने लिखने से वो भाव नहीं आएंगे भक्ति के, वो आएगा कैसे, जिसके ऊपर में गुरु वैष्णव की कृपा है वैसा सेवा है ऐसे आएगी भाई। पढ़ने लिखने से तो हम देखते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों आदमी पढ़े लिखे हैं, इसलिए वैसे नहीं आएगा, बल्कि उसके द्वारा यदि घर से हम पढ़ लिख करके नहीं आए हैं और वैष्णव का अनुगत्य छोड़ करके यदि केवल पढ़ने लिखने में हम लगाते हैं, सेवा को छोड़ करके केवल व्याकरण रटने में लगा दिया तो कुछ सब गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वो कर्म है ना, इसलिए वो कर्म के द्वारा निष्कर्मन अपनी अच्युत भाव वर्गीतम नशोवते ज्ञानम अवलंबित, वो कर्म है पढ़ना उसके द्वारा नहीं होगा, भक्ति साक्षात नहीं सहायक के लिए भक्ति के लिए हम पढ़ रहे हैं ऐसा यदि हो और सचमुच में ऐसा हो तो नहीं तो फिर जो पढ़े लिखे नहीं है उतने अधिकांश लोग हैं हम लोग हैं तो हम लोगों को भक्ति कभी होती हो ही नहीं। गाय के अंदर में पशुओं के अंदर में जो प्रेम है कि नहीं है अपने बच्चों को, वो स्वाभाविक है पढ़ने लिखने की जरूरत, वैसे हमारे अंदर में जो भावना है
वो प्रेम की है वो समझ के द्वारा हम उसको उन्नत कर सकते, ये किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते। इसलिए श्रवण हम करते रहेंगे, धीरे धीरे हरिनाम करेंगे, मंत्र के जप के बल पे, जैसे एक ग्वालिया था, कौन सा गोपकुमार, वो तो भैंस के स्कूल में गया और गाय के स्कूल में जाता था, गाय चराता था और क्या करता था, स्कूल कॉलेज में तो कभी गया नहीं, व्याकरण इत्यादि तो पढ़ा नहीं। गोपकुमार गुरु जी ने कहा दिया जैसे यही मंत्र जपो गोपाल, उसने और कुछ किया, इसलिए हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत सहारा है उपाख्यान। तो जो पढ़ा लिखा नहीं, विद्वान नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई कुछ नहीं, आप देखो जैसे हम उनके संपर्क में आकर के मंत्र जपने लगा सकता थे और वो कहां का कहां एकदम वो लोग वृंदावन में एकदम पहुंच गया। इसलिए हमारी भी वैसे ही पहुंच, इसलिए सन्नाम रूप चरिता जी खूब श्रद्धा के साथ में नाम के प्रति, मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति, धाम के प्रति, और मंत्र को कहा वृंदावन के प्रति, नवदीप के प्रति, कृष्ण के प्रति, राधा जी के प्रति, महाप्रभु के प्रति हमारा यह प्रेम श्रद्धा सब तरह से हटा करके उन्हीं के पिता के ऊपर में हम निर्भर दे सकते बस इतना। इसलिए उसके मन शिक्षा के पहले श्लोक में और एकादश शिक्षा में भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने बतलाया स्वयं दशकम भी उन्होंने ऐसा किया। इसलिए इसी तरह हम लोग जोड़ देंगे, विद्या है खूब अच्छी बात है, उसको भी भक्ति में लगाया, और यदि विद्या नहीं है तो जो कुछ है गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, भगवान की सेवा में लगाएंगे और मंत्र जप और हरिनाम में लगाएंगे, जरूर भक्ति होगी निश्चित। इसलिए इन्होंने बताया कि वृंदावन में हम रहेंगे, यदि वृंदावन किसी प्रकार से नहीं रह सके, अनुकूल वातावरण नहीं हमारा है, नहीं रह सकते, तो जहां भी रहेंगे वैष्णवों के अनुगत्य में ऐसे वैष्णवों का अनुगत्य जरूर चाहिए और मन से के द्वारा वृंदावन में हम रहेंगे। इसलिए तिष्ठन बजे तदानुरागी जनानुगामी, ऐसे भगवान के प्रति अनुरागी जन है उनके अनुगत्य में रह करके, अर्थात वो जैसा चाहते हैं ना, हमको पुतली की भांति जैसा नचाना चाहते हैं वो नचाते, हम उनके हो गए ऐसा। अपना आप स्वतंत्रता तनिक भी मत रखो, किंतु ये होगा कुछ उन्नत अवस्था में साधारण स्थिति में नहीं, किंतु हम लोग ऐसे ही चेष्टा करेंगे, हम उनके इच्छा अनुसार नहीं चल सकते, इसके बाद में भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी। जो ऐसा समय लेकर के भजन करता है इस रूप में कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, मठ में है, आश्रम में है, जहां इच्छा चल दिया, जिसके साथ में चल दिया, दूसरे लोगों के साथ में जहां तहां घूम रहे हैं, तो उसे तो अच्छा था कि हम गृह में ही रहें, अपने वृत्तियों पर अंकुश नहीं कर सकते, भजन ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा रह करके। इसलिए अपने विचारों पर, अपने मन पर अंकुश रखो भाई, भजन करो, उनके अनुगत्य में चलो। यदि तुम्हें विचार करने की क्षमता नहीं है तो उसे अंतर तो परामर्श दो, जो मैं जानू कहां जाऊं क्या कर रहा हूं, इसके लिए तो परामर्श करना चाहिए, और नहीं तो स्वतंत्र होकर के चलोगे वो छोड़ देंगे, तुम जैसा होगा तुम करोगे। इसलिए इस प्रकार से रह करके यदि कोई भजन करेगा 24 घंटा, वही एकमात्र उद्देश्य है, कैसे मैं उस चीज को उद्देश्य को प्राप्त करूं, बस एक तब तो वो भजन कर सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कृष्णाम रूप गुण लीला सुकीर्तन, सुकीर्तन क्यों कर दिया, कीर्तन नहीं कहा, सुकीर्तन मैंने सुस्त रूप से नियम पूर्वक जैसा उन्होंने लिखा है उस रूप में तुम भजन करो इन सबका, और अपने भावों के अनुकूल, भावमयी, भाव संबंधी, भावानुकूल इत्यादि को अनुस्मृति क्रमे जीवा मन संजोग संयोजन, अनुस्मृति
सब समय भगवान की लीला कथाओं का चिंतन करो। करते 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 मन को और जीवा को दोनों को उसमें लगा लो। जीवा बड़ी तेज है, ये भजन में सबसे बाधक है, और मन ये दो यदि कंट्रोल हो जाए तो भजन सहज रूप में हो जाएगा। अधिकांश रूप में लोगों का मन कंट्रोल नहीं रहता, जीवा भी कंट्रोल नहीं। गुरु जी ने कहा आजकल तुम बड़े तेज हो गए, हो गए हैं। भैया बाप उत्तर दे, हाँ हाँ हो गए। अच्छा उत्तर तो कुछ नहीं दिया, किंतु ये इसमें मूड क्या है उसका, चैलेंजिंग मूड है। कुछ नहीं कहता है, किसी ने डांटा गुरु जी ने तो उसका मुख एकदम लाल हो गया, ऐसे हो गया। समूह क्या है, इसलिए ये सब नहीं मान करके उसको सह लेना चाहिए। ये हमारे लिए अमृत है, ये समानुगत के सब। इसलिए आप सब लोगों में भगवान कृपा करें, गुरु कृपा करें, जो ऐसी भावना आए जैसे कि हम लोग भजन कर सकते। इन छोटी छोटी बातों के लिए भजन से हम विकसित हो जाते हैं। ये सब भजन के रहस्य हैं। इसके बाद में जब ये सब हो जाएगा, इसके बाद में तब लोग उत्पन्न हो सकता है भगवान की कथाओं को सुन करके। मैं भी ऐसे ही सेवा करता और होने के बाद में तब भी उनके अनुगत में भजन होते होते कृष्ण वास अनुरागी जन दासी बन कुंज में हमारा वास हो। वैसे अनुरागी जनों की दासी होकर के आकत रूप मंदिर इत्यादि की दासी होकर के अष्टकाल भज लीला मदिया 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 मदिया। ये बंगला का शब्द है, मदिया मदिया मैंने भाव में डूब करके करे हैं, सप्तम भाव में डूबे रहे और कर। जैसे रघुनाथ दास को स्वामी मत्था आया कहां से आया, सब साथ में हुआ कहां से लाया,
तो किस
बस भाव में वो मत है, बस लक्ष्या लेकर के मारे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं गोपी 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 निमाई पंडित, किसी ने कहा यार गोपी गोपी क्या कर रहा है, कृष्ण कृष्ण नहीं कर सकता। और ये ठीक, ये विपक्ष है ठीक, बस लक्ष्या लेकर के जो हाथ में था और भाव आवेश से कुमार वो लोग समझ नहीं। इसी प्रकार से जो कुछ भी लीला, एक वृंदावन में कोई हाथी बाबा थे, हमने सुना है बहुत पहले, आज से करीब 50-60 वर्ष पहले जब मैं यहां था, तो जब मैं प्रारंभ में आकर सुना था तो वो सुना था जैसे एक माँ चुन करके ले आए फूल बेली चमेली जूई सभी दल दर से ले आए, उन्होंने माला बनाया। अब माला कैसी बनी है वो ये नहीं, माला बन गई है, माला लेकर के हाथों में ऐसे खड़े हो, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और ऐसे ही ना जाने कितने घंटों को खड़े हो। ये सब भावावेश, इसलिए जब तक इस प्रकार से भजन हमारा नहीं होगा, खाने में आवेश रहेगा, लड़ने में आवेश रहेगा, हमारी आकांक्षाओं के लिए आवेश रहेगा, किंतु भजन में आवेश नहीं रहने से कैसे भजन होगा। इसलिए ऐसे सब समय रहना चाहिए जो भजन में आवेश हो और देह गेह सब कुछ भूल जाओ। भगवान को ऐसा नहीं होगा तो भजन ऐसा नहीं, कुंज की तो बात बहुत दूर है, बहुत दूर। इसके लिए ऐसे भावों के लिए करो क्या, रूप गोस्वामी जी भक्त गोस्वामी सिंधु में लिखते हैं, उसको थोड़ा सा चिंतन करो। कृष्णम स्मरण जनम चाष्य प्रेषम निज समीहितम तत्त कथा रताशाशौ कुरियात वासम ब्रजेश। पहला है ब्रज में रहो, ब्रज में कौन रहेगा, कौन रहेगा ब्रज, जिसको कोई चिंता है ही नहीं है, आगे न पीछे न आगे ना था न पीछे पड़ा कुछ भी नहीं, ऐसे लोग रह सकते, दूसरा नहीं रह सकता। जिसको चिंता है जैसे हमारा घर बार या और सब कुछ है आश्रम है, ये गड़बड़ हो जाएगा तो वृंदावन में कुछ न कुछ चिंताएं ऐसी हैं जैसे हम नहीं रह सकते। वहां तो वही रह सकता है जिसको कल क्या खाएंगे शाम को खाएंगे क्या, इसकी भी चिंता नहीं है, कपड़े हैं कि नहीं है कुछ भी नहीं, वो लोग सब वृंदावन में पास करना। और वैभव को लेकर के हम रहेंगे वो उसमें होना असंभव है, उस उसका वास होना चाहिए। जैसे रूप और सनातन जी
रघुनाथ दास गोस्वामी ने ब्रज में बात किया, भूगर्भ गोस्वामी ने बात किया, ऐसे बात करने के लिए बात है, वो जरूरी है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कुर्यात वासम प्रदेश राज, ब्रज में तू बात करो। और कैसे बात करो, ऊपर के श्लोक में रूप गोस्वामी ने बताया, वैष्णव के रसिक वैष्णव तत्व वैष्णव के अनुगत करो और उनके भावों का अनुगमन करो, उनकी क्रियाओं का, कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं, क्या करते हैं, उनके व्यवहार दूसरों के प्रति क्या है, कैसे वो बोलते हैं, समाधिस्थ कथा भाषा क्या है, ये सबको लाना चाहिए। इस सब में कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, इस सब में उनके साथ रहने पर लक्ष्य करके और अनुगत्य करते, ये सब चीज ऐसे नहीं सुन लिया कान से निकाल दिया और किया, करेंगे अपने मन की, डंडा वहीं रहेगा। हम पंचों की बात हमारे सिर पर है, जो कुछ आप लोग फैसला कर लेंगे वो मान लूंगा, किंतु डंडा वहीं रहेगा जहां पर भी है, समझा इसका। दो भाइयों में लड़ाई लग गई एक इंच जमीन के लिए और मारामारी होने लगी, गांव वालों पंच लोग आए, काजे भाई तुम लोग ऐसा मत करो, हम लोग स्थिर कर देते हैं कि कहां तक तुम्हारा क्या है, ठीक है। तो उस राज्य पंचों की बात हमारे सिर पर है, किंतु डंडा जहां है वहीं रहे, तो तुम तो हुआ क्या, हम सबकी बात मानेंगे, सबकी बात मान लिया, किंतु करेंगे वही जो हम जानते हैं, तो तब इसे साधन भजन भाई नहीं होगा। ब्रज में रहेंगे कैसे रहेंगे, इस तरह से रहेंगे, तब तक कथा रतम क्या कृष्ण को स्मरण करेंगे और साथ साथ में जनन चश्य कृष्ण के जो अपने जन हैं उनका स्मरण, जैसे हमको सख्त भाव लोग हुआ सब। अच्छा कृष्ण का स्मरण कैसे करेंगे, बड़े श्याम सुंदर हैं, उम्र अभी 8-9 वर्षी है, गोप वेश है, मैया ने उनको गोप वेश में सजाया है, साथ में एक लौकटी होनी चाहिए, कमरी भी हो जाए तो हद में, लौकटी और कमरी सब कुछ है, कमरी छाया के लिए, वर्षा होगी ना तो छाता तो है नहीं, उसको ओढ़ते लगते कि इसलिए पशुओं को चराने के लिए और अपने शरीर की रक्षा के लिए, और बच्चों के साथ में बड़े बड़ा प्रेम रखने वाले, कभी कभी बच्चे यदि थक जाते हैं ना कहते गैयों को हाथ ले आओ, और बच्चे सब ले आए ना तो कहते थक गया ना तो उसको गोदी में बैठा करके उसके पैर उसकी दबा दे, और कभी अपने थक जाएंगे तो वो उनका पैर दबा दे, बड़ा सहज दुराव में है, कोई भी दुराव नहीं है, परस्पर जूठा भी खा लेते हैं, सब रस के कृष्ण का वो ध्यान करें और उनकी लीलाओं का वर्णन करें, किस प्रकार से गोचारण करते हैं, क्या क्या करते हैं, इन सब लीलाओं का स्मरण करें, स्मरण करें और कृष्ण का स्मरण करें, और क्या करें, जनन चस् उसमें से जैसे भक्त हैं सब रस के, जैसे सिद्धांत, सिद्धांत जी कौन है, राधा जी के कृष्ण से बड़ी उनकी मित्रता है, एक सखा और सखा है जो कृष्ण से उम्र में छोटे, ये कृष्ण के बराबर वाले हैं, और कुछ उनमें दास भाव युक्त सुबल कैसे हैं, सुबल थे अत्यंत अनुरागी जन हैं और कृष्ण से किसी भी विषय में दुराव नहीं, सिद्धांत से कुछ दुराव हो सकता है, कुछ छिपा लें, राधा विषय यदि कोई बात है ना तो उनको छिपाएंगे, किंतु सुबल से अपने हृदय की जितनी बातें हैं वो सब उनसे कहते हैं, दोनों गलदैया देकर के सो जाएंगे और
उसी समय मन प्रणाम होगी, कैसे क्या होगा। तो जिसको जिस स्मृति होता है ऐसे भक्तों का स्मरण करना। कभी कभी सुदाम श्रीदाम जी सुबल जी कभी कभी स्त्री वेश सज जाता है और बन करके और राधा जी के पास में बेखट के चला जाए, कोई भी नहीं समझ सकता है ये कौन, इस प्रकार से काम बना लेता है। तो उनका उनको स्मरण करेंगे जो सत्यभाव, उसी प्रकार से जो जो भी स्वस्थ में है उसी प्रकार से उनकी चिंता करेगा। किसकी? उस कृष्ण की। जैसे मधुर रस में यदि किसी को चिंता करना है कृष्ण के लिए तो उनके दूसरे कृष्ण हों, लकुटी की कोई जरूरत नहीं है, लकुटी रवि सकती है किंतु वंशी रहनी चाहिए। और अत्यंत मधुर उनके जो गुण हैं वो सब रसिकता इसमें अधिक होनी चाहिए, विदग्धता विदग्धता होगी, गोपियों के मन की भाव को जानने वाला होना चाहिए और उसको रिझाने वाला होना चाहिए, फिर ललित नायक होना चाहिए। और सब जो गुण है वो कृष्ण का चिंतन करेगा और उनके कथाओं का लीलाओं का स्मरण। उन लोगों के लिए रास लीला वो गोपी गीत भ्रमर गीत बेनु गीत इत्यादि का स्मरण करना चाहिए उन लोगों को। और जन्म का रुक्मंजरी पति रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि ये लोग और इनके सिद्ध स्वरूप का, राधा जी का जो स्मरण है उतना सहायक नहीं होगा जितना कि होगा वो लोग दोनों इष्ट देव के रूप में राधा कृष्ण रहेंगे, ललिता विशाखा भी इष्ट देव के रूप में रहेंगे। स्मरण होगा इनकी जो सेवाएं हैं जो करती हैं उन सब का, इनकी सेवाएं हमारे लिए कौन, उनकी सेवाएं हमारे लिए अनुकूल नहीं होगी, राधा जी जो सेवा कृष्ण की करती हैं उससे हमारी अनुकूलता। इसलिए अपने भावों के अनुकूल जो है उनको स्मरण। और साधक जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी की, और अभी जो हैं जो राजानुदा भजन करने वाले हैं उनके व्यवहार में उनके साथ में रह करके भजन करना चाहिए, उनके भावों को ग्रहण करने की चेष्टा करना चाहिए। इसलिए कहते हैं तत्त कथा रतस चाशु, दिन रात उसी की चिंता में लौ ली, कब खाया कब पिया कब क्या हुआ इसकी चिंता की। ऐसे व्यक्ति उस चीज को पाएंगे जो चीज सर्वोत्तम है उसका मूल्य भी बहुत अधिक है। एक कांच की गोली का दाम एक रुपया हो सकता है आसाना चार, एक फूटी कौड़ी का दाम हो सकता है कि एक पैसे में मिल जाए, किंतु कोहिनूर हीरा एक पैसे में नहीं मिलेगा, उसका मूल्य भी ऐसा होगा, चिंतामणि उससे भी अधिक, संजीवनी जो चीज है वो और भी अधिक, तो उसका मूल्य भी उतना अधिक होगा। तो इसका साधन भी वैसा ही दुर्लभ है, जैसे वो वस्तु है ऐसे उसका साधन भी है, इसलिए ये साधन भी सर्वोत्तम साधन है और सबके लिए ऐसा सुलभ नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए है जो सर्वस्व त्याग करके एकमात्र उन्हीं की चिंता करते हैं। इसलिए सत्य में उनकी कथा में लिखा, कल क्या खाएंगे, हमारा कपड़ा गंदा हो गया, हमारी घड़ी तो है नहीं, ये सब चिंता रहेगा तब ये सब चीज नहीं है, दिन रात उन्हीं की चिंता में रहे। अभी हम अपने रोग की चिंता करेंगे ना भगवान की चिंता करेंगे, उन लोगों को कोई रोग ही नहीं होता, उसको स्थिति को पार कर गए, न शोक है न रोग है, क्योंकि ये तो साधन भक्ति के समय में नहीं, ये सब चीजें भाव भक्त होने के पहले ही साधन स्थिति में ही जितने प्रकार के क्लेश हैं और हो सकते हैं सब क्लेश उनके दूर हो जाते हैं। इसलिए क्लेश तो होता नहीं, न शारीरिक न मानसिक, इसे भी मुक्त तो हो ही जाते हैं, मुक्त होने के बाद में तब ऐसा व्यक्ति वो दिन रात उनकी कथाओं में दूर जाते हैं। आज नहीं चाह रहे कितना बजा साढ़े सात, आज यही सत्र है, कल फिर हम लोग इसका मन चार। भजन करने वाले साधकों को कैसे भजन करना चाहिए उसका सार रूप गोस्वामी ने जो बतलाया है उसको कल हमने बतलाया तन नाम रूप चरिता आदि द्वारा। उसका सार यही है निरंतर भगवान नाम कीर्तन करे, उसमें भी अपने स्वाभिष्टमय भाव के अनुरूप जो भगवान के नाम हो, उनकी जो लीलाएं हों, उनके जो चरित्र हों, उनके जो परिकर हों, उनके अनुकूल इस सबको ग्रहण कर, वैसा ही कीर्तन विवाह के द्वारा और वैसे ही जीवा के द्वारा और वैसे ही भावों का स्मरण करते हुए चले। वृंदावन में रहे कृष्ण ब्रजे ब्रज में रहे और पतानुरागी जमी जनानुगामी उनके अनुगत रह करके उनके आचार विचार व्यवहार भजन प्रणाली सबको अनुगमन करें और ऐसे करते हुए भजन करते हुए अपना जीवन निर्वाह करें, यही समस्त उपदेशों में सार उपदेश है। एक मिनट भी इधर उधर न जाए, ऐसा व्यक्ति वही कर सकता है जो सर्वनिरपेक्ष हो, अकिंचन हो, शरीर से भी स्वस्थ हो, मन से भी स्वस्थ हो, सब गुण उसमें हो, सब ऐसा ऐसे बिना भगवान की विशेष कृपा के ऐसा अकिंचन निष्किंचन भगवान के ऊपर ही अपने सब कुछ निर्भर करने वाला व्यक्ति भजन करने वाले बिरले मिलेंगे। ऐसा ही होने की चेष्टा करनी चाहिए, अंततः लक्ष्य रखना चाहिए कि ऐसा ही हम भजन करें। फिर कल ये भी बतलाया कृष्ण को स्मरण करो अपने भाव अनुकूल कृष्ण को और उनके सेवकों को नित्य परिकरों को जो अपने भाव के सन्निकट हों अनुकूल हों उनका स्मरण करें। निज समीहितम माने अपने भावानुकूल हमारे भाव के जो निकट है ऐसे ही कृष्ण को, कृष्ण यदि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हैं कृष्ण और वो जरासंध से लड़ रहे हैं तो हमारे भाव के अनुकूल होंगे कि नहीं, क्या प्रियानंद बतलाओ होगा ना? क्या कर ठीक तो ऐसे ही अपने भावों के अनुकूल होना चाहिए, होगा कि नहीं? संक्षिप्त गदाधारी जो कृष्ण हैं हमारे भावों के अनुकूल होंगे तो नहीं। जो सखरस के कृष्ण हैं वो हमारे भावों के अनुकूल होंगे कि नहीं? वो भी नहीं। गोदी में खेलते हुए कृष्ण लड्डू लिए हुए लड्डू गोपाल जी हैं हमारे भाव के अनुकूल होंगे कि नहीं? मथुरा में कंस को मारते हुए कृष्ण हमारे भाव के अनुकूल होंगे कि नहीं? पाप साथ के कृष्ण हमारे भाव के अनुकूल होंगे कि नहीं? ये सब विचार करके अपने भावों के अनुकूल निकट जो कृष्ण हो उपयोगी और उनके जनों को नित्य स्मरण करते हुए वैसे ही भाव को ग्रहण करते हुए भजन करना चाहिए। इस प्रकार से ब्रज में रहो कि मैं ब्रज का रखने वाला हूं। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कृत्या जाता अनुरागो चित्त चित्त गायक उन्मादवत नृत्य लोक बाह्य। नारद ऋषि द्वारका में गए हैं और वसुदेव जी यज्ञ करा रहे थे, उनको देखते ही यज्ञ बंद कर दिया गया। कभी यज्ञ का फल आ गया, यज्ञ का फल क्या है? साधु संतों का, इसलिए यज्ञ का फल आ गया। तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपने पुत्र के लिए पुत्र पाने के लिए हमने तपस्या की थी, हमने मुक्ति के लिए कुछ नहीं की, इसलिए बतलाई कि हमको मुक्ति कैसे मिले। तो नारद जी ने विचार किया, कहां हमसे ये उन्नत और ऐसे प्रश्न कर रहे ज्ञानियों जैसे। उन्होंने सोचा यह कि कोई भी व्यक्ति आता है, यदि विद्वान मैं हूं ऐसा कह करके यदि प्रश्न करता है तो प्रश्न का उत्तर देने वाला उत्तर नहीं देगा, उसके पास उत्तर लेने के लिए परिप्राप्त परिप्रश्न और सेवा चाहिए। मैं बहुत दिन ही हूं हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाए यदि मैं योग्य हूं, ऐसा प्रश्न होकर हमारा प्रश्न का उत्तर दीजिए तो ऐसा नहीं, यदि मैं क्वालिफाइड हूं यदि मैं योग्य हूं तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा की जाए या उत्तर दिया जाए, ऐसा प्रश्न होना चाहिए, चैलेंजिंग मूड में नहीं होना चाहिए, या ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं इसलिए परीक्षा के रूप में नहीं, सेवा वृत्ति के साथ में उनसे ये प्रश्न किया जाए। तो उस समय में सोच रहे हैं जैसे ये हमको उसका रहे हैं, केवल उसका रहे हैं माने क्या, उत्साहित कर रहे हैं कोई हरि कथा कहने के लिए बस। जैसे हमारे गुरु जी आते थे यहां या कहीं भी रहते थे, मैं जानता था उनका स्वभाव, एक आदमी एक घंटा बैठा रहा उसे कोई बातचीत नहीं करें, वो अपने भाव में जब तक कोई कुछ पूछेगा नहीं तब तक कुछ नहीं बोलेंगे, पूछने पर भी सहज ही नहीं बोलेंगे, बहुत गंभीर रहते। तो देखा जैसे मथुरा के कुछ लोग आए हैं वकीलों के लोग या और दूसरे लोग बड़े अच्छे आदमी, तो मैं जानबूझ करके कोई प्रश्न कर देता, ये प्रश्न उनके तरफ से था अपने तरफ से नहीं, कोई प्रश्न अनबुझ अज्ञानी जैसा प्रश्न था, गुरु जी समझ जाते थे ये अपने लिए नहीं इन लोगों के लिए ये प्रश्न कर रहा है, तब फिर वो प्रश्न का उत्तर देने वाला, तब फिर वो लोग प्रश्न पर प्रश्न करते फिर धीरे 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 जम जाते, ऐसे हरि कथा। ऐसे ही उन्होंने पूछा पुत्र के लिए किया, पुत्र के लिए किया मुक्ति के लिए किया, इन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन है प्रश्न, प्रधान क्या चीज है, कौन अच्छी चीज है, बोलो तो कहां पुत्र प्रेम, कृष्ण को ही अपना पुत्र बना करके और उसको पुत्र को आए ले आए कृष्ण को, बिना प्रेम के तो उनको कोई पाई नहीं सकता है पुत्र के, तो उनको मुक्ति के लाख गुना उन्नत उनको प्रेम हुआ है ऊंचा, और उस प्रेम के द्वारा कृष्ण उसके पुत्र के रूप में उनके घर में पधारे, बड़ा मुक्ति की क्या जरूरत है,
उनको भजन करने वाला सब उनके जानवर से भजन करने वाला तो सेवा करने के लिए तैयार है,
उनके भक्तों की उनके भक्तों की पुत्र की बात छोड़ दो, उनके पुत्र के भगवान की बात छोड़ दो, उनका जो भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हीं जो साधक सिद्ध नहीं वो भी साधक ही जगत में रहने वाला है जैसा, उसके लिए मुक्ति उनके घर में पानी भरती है और रस्सी बनाती है जेवर जेवर रखती है, तो उस मुक्ति की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, मुक्ति बहुत कुछ है उस भक्ति के साथ। तो अभी ऐसा प्रश्न किए हैं कि ये हमको अनुकूल समझ करके भगवान की कथाएं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि लोग मिल गया कहने के लिए वो कर, तो उनके लिए नहीं कह रहे, वहां पर और जो लोग थे या भावी पीढ़ी में जो होने वाले हैं संसार में उन लोगों के लिए ये बतला रहे हैं।
जातानुरागो वितचित्तौच्यं हसत्कठोरो गतिरौक्तिकायत् अनुमादवत्नि गतिलोकबाह्यम्
एवं व्रत स्वप्रियनामकृत्या जिनका व्रत ही ऐसा है नारद जी का
एवं व्रत
एवं व्रत माने
जिनका व्रत ही ऐसा
व्रत माने स्त्री उनकी ऐसे ही व्रत में संकल्प कर रखा है जैसे एकादशी का व्रत और कोई व्रत धारण कर माने संकल्प करते हैं कि ये हमको करना है आज हम निर्जला एकादशी व्रत करेंगे और निरंतर 24 घंटे सोएंगे नहीं भगवान का स्मरण और कीर्तन करेंगे ये व्रत ऐसे ये इनका व्रत है क्या स्वप्रिय नाम कृत्या जातानुरागो निश्चित स्वप्रिय नाम कृत्या स्वप्रिय माने अपने भावों के अनुरूप अनुकूल भी नहीं भावों के अनुसार जो है अनुकूल तो दूर हो जाएगा अनुकूल दूर हो जाएगा थोड़ा सा हम अनुकूल नहीं चाहते हम क्या चाहते भाव के रूप में जैसा आवाम जैसे जैसे कल जो कीर्तन किया श्री कृष्ण गोपाल हरे गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण भासी जशोदा प्रणय प्रसिद्ध श्री वल्लभी जीवन राज इन नामों में से किस प्रकार के नाम उसमें से अपने भाव के अनुकूल में चुन लिया ये कीर्तन पूरा किया और कीर्तन करने के बाद में उसका दुआ जो होता है दुआ दुआ मैंने एक लाइन जो होती है तो वो कहने लगा श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी यशोद तनय प्रसिद शिवल्लभी वनराधिकेश शिवल्लभी वनराधिकेश शिवल्लभी जीवन राधिकेश शिवल्लभी जीवन राधिकेश शिवल्लभ लगाने लगा शिवल्लभी तो इसका मतलब क्या हुआ उसमें से उसको यही अच्छा लगा उसके भाव के अनुरूप है उसमें से यदि ये लगा हासी जसोदा तब वो ही लगा हासी जसोदा तनय प्रसिद्ध हासी जसोदा तनय प्रसिद्ध हासी जसोदा तनय प्रसिद्ध वो जैसे भाव के जो जिसको जैसा भाव रहेगा वो ऐसा लोग उसको कृष्ण को करेगा तो सब ये नाम कृत्या उसी का जो जिस रूप में जिसके लिए अनुरूप जिसके भाव है ये किसके लिए हो रहा है जिनको लोग हो गए उनके लिए सब लोगों के लिए नहीं जिनको अभी लोग उत्पन्न नहीं हुआ उनके लिए कोई अपना प्रिय नाम नहीं है उनके लिए जगन्नाथ ब्रह्मा पाता
परमात्मा
ईश्वर जगन्नाथ मुरारी कृष्ण राम नृसिंह कल्कि बावन ये सभी उनको एक समान है उन लोगों के लिए नहीं ये विशेष लोगों के लिए जो भावुक है रसिक है जो कि नाम लेते ही एकदम बाह्य अनुभूति भी दूर हो जाती ऐसे लोगों के लिए बहुत एडवांस